ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विश्व मौसम दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। मौसम के वैज्ञानिक विश्लेषण से आपदा न्यूनीकरण किया जा सकता है, ऊर्जा मंत्री अनिल कुमार सिन्हा का कथन। ऑनलाइन होने वाली ठगी को लेकर सजग रहने का नेपाल प्रहरी ने किया आग्रह। भक्तपुर के सूर्य विनायक से काभ्रे के धूलीखेल तक सड़क विस्तार का काम 67% हो गया है पूरा। और ईरान के साथ वार्ता को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया सकारात्मक। अब समाचार विस्तार से। विश्व मौसम दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन, आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण भविष्य में आपदा न्यूनीकरण एवं सुरक्षित समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय के समन्वय में संचालित सप्ताहव्यापी कार्यक्रम जल और मौसम संबंधी जनचेतना बढ़ाने में योगदान देगा। मंत्री सिन्हा ने नेपाल की भौगोलिक विविधता, हिमालय पहाड़ और तराई के कारण मौसम और जलवायु प्रणाली को जटिल और संवेदनशील बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा जोखिम बढ़ता जा रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार जल तथा मौसम सेवाओं के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, मंत्री सिन्हा ने बताया कि पूर्वानुमान प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग, अवसंरचना विस्तार एवं दक्ष जनशक्ति के विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जोखिमग्रस्त समुदायों तक समय पर सूचना पहुंचाने के लिए पूर्व चेतना प्रणाली को और मजबूत बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है। भक्तपुर के सूर्य विनायक से काभरे प्लान चौक के धूलीखेल तक 6 लेन सड़क विस्तार की भौतिक प्रगति 3 साल में महज 67% हुई है। 3 साल पहले शुरू किए गए 16 किलोमीटर सड़क विस्तार में अब तक 67% भौतिक प्रगति हुई है। ये जानकारी सूर्य विनायक धूलीखेल सिंधुली बर्दीवास सड़क परियोजना ने दी है। खनि तथा भूगर्भ विज्ञान विभाग ने चूना पत्थर, लाल मिट्टी, धातु पत्थर लगायत विभिन्न 16 प्रकार की खनिजन्य चीजों के उत्खनन की अनुमति दी है। विभाग ने नेपाल में मौजूद खनिज संपदा के अन्वेषण से खनिजजन्य उद्योगों का विकास कर देश में औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से उत्खनन की अनुमति दी है। विभाग ने निजी और नेपाल में पंजीकृत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की 166 संस्थाओं को अनुमति दी है। ये जानकारी सूचना अधिकारी नारायण बांसकोटा ने दी। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाले गृह मंत्रालय के कर्मचारियों और सुरक्षा निकायों को सम्मानित किया है। आज मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री अर्याल ने कर्मचारियों और सुरक्षा निकायों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर गृहमंत्री अर्याल ने कर्मचारियों और सुरक्षा निकायों की प्रशंसा की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के खिलाफ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण के आरोपों को संशोधन कर वापस लेने के महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद मामले को हृदय यानी अगली सुनवाई जारी रखने के तहत कल के लिए तय किया गया है। न्यायाधीश विनोद शर्मा और अब्दुल अजीज मुसलमान की संयुक्त पीठ में आज सुनवाई पूरी न होने के कारण इसे कल के लिए स्थगित किया गया। ये जानकारी अदालत के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोयराला ने दी। इससे पहले न्यायाधीश सारंगा सुवेदी और सुनील कुमार पोखरेल की संयुक्त पीठ ने चैत 5 को लामिछाने के खिलाफ संपत्ति शुद्धिकरण और संगठित अपराध के मामलों को वापस लेने संबंधी महान्यायाधिवक्ता के संशोधित निर्णय को प्रस्तुत करने का आदेश किया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
भाउजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते भाउजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ भाउजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मुगु के रारा विमानस्थल तालचा में नेपाल एयरलाइन्स ने आज से नियमित उड़ान शुरू कर दी है। नेपालगंज से सप्ताह में 4 दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार रारा विमानस्थल तालचा के लिए उड़ान की व्यवस्था की गई है। साथ ही गुरुवार के दिन सुर्खेत से भी रारा विमानस्थल तालचा के लिए उड़ान संचालित होगी। ये जानकारी नेपाल एयरलाइंस के स्टेशन इंचार्ज नवीन कुमार विष्ट ने दी। नियमित उड़ान शुरू होने से खासकर गंभीर मरीजों को बाहर ले जाने की मजबूरी झेल रहे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नेपाली कांग्रेस की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक कल के लिए बुलाई गई है। पार्टी मुख्यालय के कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल ने आज एक सूचना जारी करते हुए बताया कि ये बैठक कल मंगलवार दोपहर 1 बजे पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन सानेपा ललितपुर में बुलाई गई है। सप्तरी की हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका 6 अंडी पट्टी में आज आग लगने से 3 घर जलकर नष्ट हो गए। पुलिस के अनुसार स्थानीय किशुन देव मंडल के घर में आग लगने से उनके 3 घर जल गए। बताया गया है कि आग विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस आग लगी से लगभग 10 लाख रुपए के बराबर का नुकसान होने का अनुमान है। स्थानीय लोगों, पुलिस और नगरपालिका की दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिला प्रहरी कार्यालय ने जानकारी दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के बिजली ढांचे की तबाह करने की 48 घंटे की डेडलाइन से पीछे हटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत किया कि ईरान के एक शीर्ष व्यक्ति से अमेरिका की बातचीत हो रही है। फ्लोरिडा के पाम बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विमान में बैठने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान चाह रहा है कि समझौता हो और अमेरिका भी समझौता करना चाहता है। उन्होंने फोन पर बात करने की संभावना भी जताई। ट्रंप ने आगे कहा, अगर सब ठीक रहा तो हम इसे सुलझा लेंगे, नहीं तो हम बस लगातार बम बरसाते रहेंगे। ईरान के साथ बातचीत पर उन्होंने कहा, देखेंगे कि वे क्या करते हैं। हमारे बीच में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है। मैं कहूंगा कि लगभग सभी मुद्दों पर सहमति है। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका एक शीर्ष व्यक्ति से बात कर रहा है लेकिन सर्वोच्च नेता से नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के बारे में उन्होंने कहा, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान शांति के बदले अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम की योजनाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। उन्होंने कहा, कल सुबह उनके समय के अनुसार हम उनके सबसे बड़े बिजली उत्पादन प्लांटों को उड़ाने वाले थे जिनके निर्माण पर 10 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ है। वो बहुत बड़ा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक वार में सब खत्म हो जाता, वह ढह जाता, वे ऐसा क्यों चाहेंगे। इसलिए उन्होंने कॉल किया, मैंने नहीं किया। उन्होंने कॉल किया, वे समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि और हम समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एक अच्छा समझौता होना चाहिए और इसमें आगे कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। वे अब परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, वे इस बात पर सहमत हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व मौसम दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। मौसम के वैज्ञानिक विश्लेषण से आपदा न्यूनीकरण किया जा सकता है, ऊर्जा मंत्री अनिल कुमार सिन्हा का कथन। भक्तपुर के सूर्य विनायक से काभरे के धूली खेल तक सड़क विस्तार का काम 67% हो गया है पूरा। और ईरान के साथ वार्ता को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया सकारात्मक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।